नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आज लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिंधिया ने स्पष्ट किया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधानुसार पंजीकरण करके ऐप को सक्रिय कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 1 अरब मोबाइल उपयोगकर्ता हैं और उपयोगकर्ताओं को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2023 में संचार साथी पोर्टल और 2025 में संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। श्री सिंधिया ने बताया कि नागरिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। 20 करोड़ लोगों ने संचार साथी पोर्टल को देखा है जबकि 1.5 करोड़ लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है। श्री सिंधिया ने बताया कि इस पोर्टल और ऐप के आधार पर 1.5 करोड़ फर्जी मोबाइल फोन कनेक्शन काटे गए हैं। संचार साथी ऐप और पोर्टल पारदर्शी और उपयोग में आसान टूल के जरिए नागरिकों को खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। संचार साथी उपयोगकर्ताओं को कॉल लॉग से संदिग्ध धोखाधड़ी की सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा देता है जिससे जागरूक नागरिक कम जागरूक उपयोगकर्ताओं की सक्रिय रूप से सुरक्षा कर पाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर वर्ष ये दिवस मनाता है। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है।
समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई जनित डीप फेक की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया मसौदा नियम प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की सख्त जरूरत है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद दोनों ही किसी भी टीवी चैनल या समाचार पत्र के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया है जिससे देश भर के करोड़ों परिवारों को लाभ हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के 12 वार्ड में हुए दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों में भाजपा ने 7 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर और कांग्रेस तथा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीट पर जीत मिली। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एमसीडी चुनाव के नतीजे दिल्ली में भाजपा द्वारा किए गए काम को दर्शाते हैं। उपचुनाव 30 नवंबर को 580 मतदान केंद्रों पर हुए थे जिसमें 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवार मैदान में थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने अंतिम समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।